सब सही तरह से समझाने आया हूँ, रेहान ने कहा। वो अभी भी सबको अपनी बातों में उलझाना चाहता था, जिस तरह से उसने अपने घर वालों को उलझाया था। तभी दरवाज़ा खुला देखकर एक बाल अंदर आए। क्या गलत है क्या सही, अपने घर जाकर करो ये सब, नूर गुस्से में बोल रही थी। उसे नहीं लगा था कि रेहान यहाँ तक उसके पीछे आएगा। यहाँ तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, नूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या हो रहा है, इकबाल ने अंदर आते ही पूछा। उसके घर में दूर तक आवाज़ आ रही थी। उसने देखा सामने रेहान खड़ा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम, रेहान ने झट से सलाम किया। मैं बस गलत फहमियाँ दूर करने आया था, रेहान ने कहा। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, नूर फिर गुस्से में बोल उठी। मुझे कोई गलत फहमी दूर नहीं करनी, मैं इस घटिया इंसान को यहाँ देखना नहीं चाहती। इकबाल ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा, हल्के से थपथपाया। बेटा मैं हूं ना, तुम अंदर जाओ। रेहान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कॉल उसने नूर को किया था वो इकबाल ने उठाया था। वो उसकी सच्चाई पहले ही जान चुके थे, अब वो उसे बातों में नहीं उलझा सकता था। अपने घर में शायद सब उसकी बातों में आ जाते, अम्मी अब्बा यहाँ तक कि उसकी बीवी भी खामोश रह जाती, लेकिन इकबाल को अपनी बेटी से मोहब्बत थी, ऐसे इंसान से नहीं। मैं बस गलतफहमी दूर करने आया था, रेहान ने फिर कहा। नहीं चाहिए हमें कोई सफाई, नूर ने गुस्से में दोबारा काट दिया। चाचा जान, जो कुछ भी हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी मॉम ने जो कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, कहते हुए उन्हें सोचकर बात करनी चाहिए थी, रेहान ने नरमी से कहा। मैंने कहा ना अभी के अभी जाओ यहाँ से, नूर उसकी बात काटते हुए चिल्लाई। नूर बेटा, इकबाल ने उसे रोकना चाहा। मैं बात कर रहा हूँ ना, रेहान तुरंत बोला। आप मुझे बचपन से जानते हैं, हमारा रिश्ता इतना पुराना है, मैं कैसा हूँ आपको पता है। जो गलत फहमी हुई है मैं बस उसे दूर करना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इकबाल की आवाज़ इस बार सख्त थी। आप जा सकते हैं, प्लीज़ मुझे इससे अकेले में बात करने दीजिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा, रेहान अब भी उम्मीद लगाए था। इतने में नूर ने पास रखा फूलदान उठा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चल रहा था। वो उसे रेहान के सिर पर दे मारती कि सुल्ताना बेगम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मी मैंने कहा ना ये यहाँ से जाए, नूर रोते हुए बोली। देख रहे हैं चाचा जान, इसे किसी का लिहाज नहीं, रेहान ने बात पलटने की कोशिश की, जैसे अपने घर में उसने नूर को गिराया था। लेकिन वो उसके माँ बाप थे, उनकी लाडली थी, उनकी जिंदगी थी। लेकिन वो भूल गया था कि उसे ये लोग बचपन से जानते होंगे। नूर को उन्होंने जन्म दिया है, यकीन किसी और पर नहीं अपनी बेटी पर ही होगा। फिर भी वो लगा रहा उन्हें अपनी बातों में लेने की आखिरी कोशिश में। जो लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बाप की बात नहीं सुनती वो किसी और की क्या सुनेगी, इकबाल ने रेहान को कहा था। इकबाल के चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उसे अपनी बेटी के किसी भी लहजे से शिकायत नहीं थी। असल में रेहान तो सोच कर आया था कि यहाँ आएगा और सब उसकी बातों में आ जाएंगे, नूर को मना कर ले जाएगा। अभी वो शराफत का लिबास पहने हुए था, उसे लगा कि उसका लिबास अभी तक उतरा नहीं है, क्योंकि उसे पता था पहली सीढ़ी मीठी बातें ही होती हैं। मैंने अपनी बेटी को डरना या झुकना नहीं सिखाया, इकबाल ने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, और हमारे घर के बर्तन बहुत भारी हैं, अगर सच में इसके हाथ से चल गया तो आपको ही नुकसान होगा, नूर की तरफ इशारा करते हुए वो आगे बोला। ये ऐसी है बचपन से, आप शायद इसे उतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अब आप जा सकते हैं। रेहान के अंदर गुस्सा उबल रहा था लेकिन चेहरे पर अब भी बनावटी तहजीब थी। चाचा जान, आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, ये भी सिर्फ आपका लिहाज है, उसने हल्की सख्ती से कहा, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। इतने में आंगन में हलचल बढ़ गई, आवाजें ऊंची थीं और मोहल्ले की खिड़कियां खुलने लगी थीं। पास के घरों की छतों पर लोग आ चुके थे और किराएदारों की नजरें तो पहले से ही इस घर पर टिकी थीं। अब ये सिर्फ घर का मामला में ही रहा था, तमाशा बनने लगा था। रेहान को इस बात की परवाह नहीं थी कि इस तरह से इकबाल की इज्जत का जनाजा उठ रहा था। कितनी अजीब बात है, इकबाल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उस दिन अपने ही घर में मुझे सलाम करना गवारा नहीं था, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और आज हमारे पीछे दूसरे शहर तक चले आए। वो एक पल रुका फिर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कितनी हैरानी की बात है ना। रेहान उसे गौर से देख रहा था और उसी पल समझ गया ये आदमी अब उसकी बातों में आने वाला नहीं। मेरी बेटी लावारिस नहीं है, उसका बाप जिंदा है, इकबाल की आवाज अब गूंज चुकी थी। अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया क्योंकि रेहान अब भी बेशर्मी से वहीं खड़ा था, जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब आप गलत कर रहे हैं इकबाल चाचा, रेहान ने दबी हुई आग के साथ कहा। ऐसी बात नहीं है, गलती तो मैंने की थी, इकबाल ने उसकी बात काट दी। तुम जैसे घटिया और गलीज इंसान पर यकीन करके मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बस यही वो पल था जहां रेहान का असली चेहरा बाहर आने लगा। अगर मैं गलीज हूँ, वो जहर घोलते हुए बोला, तो आपकी बेटी क्या है, बहुत पाक साफ। नूर और सुल्ताना बेगम सन रह गईं और इकबाल की आंखें खून उतारने लगीं। दस दस लड़कों से चक्कर हैं इसके, रेहान ने वार किया। एक पल को सन्नाटा छा गया। इकबाल ने उसे घूर कर देखा फिर बेहद ठंडे मगर खतरनाक लहजे में बोला, और तुम शरीफजादे ये सब बताने के लिए यहाँ तक आए हो, अब जो जहाँ से बताने की जरूरत नहीं है, रिहान ने तंज के साथ कहा। जब सबके साथ इसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेरे साथ ही क्या दिक्कत है। सुल्ताना बेगम और नूर ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बातें अब साफ गिरती जा रही थी। वो एक माँ बाप के सामने उनकी बेटी के बारे में किस तरह से बात कर रहा था। इकबाल ने बहस करने की जगह सीधा जवाब दिया, इसकी मर्जी है, ये तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, अब जो इसे सही लगेगा वही करेगी, समझे। फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रेहान कहाँ लुकने वाला था, तो अरमान और बाकी लड़कों के साथ क्यों थी ये। उसने फिर वार किया, क्योंकि इसकी मर्जी थी, इकबाल ने बिना रुके कहा, और अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, सुन लिया ना, यही सुनना चाहते थे ना तुम। इतना कहकर उसने रेहान की बाजू पकड़ी और जोर से धक्का दिया, अब निकलो यहाँ से। रेहान का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से तमतमा उठा, लेकिन अब रुकने की कोई जगह नहीं थी। ऊपर छत पर खड़े किराएदार मियाँ बीवी सब देख रहे थे साफ साफ, और सच कहें तो मजा ले रहे थे। वैसे भी उनका इस घर से केस चल रहा था, और आज उन्हें मौका मिल गया था इकबाल को नीचे गिरते देखने का। मैं तो आपको सीधा साधा समझ रहा था, मगर आप तो बड़े पहुँचे हुए निकले। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ इकबाल को देखा, अच्छे लगे तुम लोग, आई लाइक इट, मुझे सीधी बात करने वाले लोग ही पसंद आते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ा, चलो अब जब सब खुल ही गया है तो खुलकर बात करते हैं। इकबाल चुप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें अब सख्त हो चुकी थीं। मुझे भी सीधी बातें पसंद हैं, रेहान ने सीधा वार किया, मुझे नूर चाहिए, आप इसे मुझे दे दीजिए और बदले में आपको जो चाहिए मांग लीजिए। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे रास्ता पहले से ही उसके लिए साफ हो। अगले ही पल तड़ाक, इकबाल का हाथ उठा और रेहान के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। निकल जाओ यहाँ से, उसकी आवाज गूंज उठी, और मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। नूर सन खड़ी थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेहान इतनी गिरावट तक आ सकता है। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर भी सिर्फ हैरानी थी, और ऊपर खड़े किराएदार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे मुंह पर हाथ रखे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब सच में हो रहा है। थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि रेहान का गुस्सा फूट पड़ा। वो झटके से आगे बढ़ा
और इकबाल के चेहरे पर जोरदार मुक्का दे मारा। इकबाल संभल नहीं पाए, उम्र अपना असर दिखा गई, वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़े।